جی ہاں میں نے عرض کیا کہ بسم اللہ کریں.
جی سر, میرا میرا سوال روحانیت ایک منٹ دادی ایک سیکنڈ ذرا, باقی جتنے بھی لوگ ہیں پھر وہ کلیئر کر لیں جب کوئی کوسچن کر رہا ہو. پلیز تھینک یو.
جی آپ فرمائیں. جی
سوال یہ ہے کہ روحانیت کی بابت تصور ہے سر, بہت ڈسٹورشن ہے, جس کا بھی میوٹ نہیں ہے پلیز
جی.
سر سوال یہ ہے کہ روحانیت کی بابت جو تصور ہے کہ عملے حاضرات امتیاز اور نجوم اور تعبیر جنڈوں کی قبیل کا ہی علم سمجھا جاتا ہے, تو سر بات یہ کہ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ روحانیت کی اصل کیا ہے, تعبیر کی بھی اصل کیا ہے روحانیت, یہ سمجھنا ہے.
بہت ہی خوبصورت سوال کیا آپ نے. اس میں یہ جو آپ نے الفاظ فرمائے کہ یہ تعویذ گنڈے, دیکھیں ہمارے ذہنوں میں روحانیت کے بجائے روحیت ایک علم ہے. روحیت کیا چیز ہے؟ روح کے بارے میں یہ مثلا جیسے روحوں سے باتیں کرنا, جیسے کسی بندے کے کی روح سے رابطہ کرنا, اسے سیانسز کہتے ہیں انگریزی میں. محفل سجائی جاتی ہے, اس میں سارے لوگ مل کر فوکس کرتے ہیں اور کسی کی روح سے رابطہ کرتے ہیں, اسے عملے حاضرات کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہ عملے حاضرات جو ہے یہ سب ایک طرح کی شعبہ بازی ہے. کیا کہا میں نے؟ تعویذ گنڈوں کا کاروبار جو ہے یہ تعویذ گنڈوں کا کاروبار جو ہے وہ ظاہر ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے مفاد کے لیے لوگوں کے یقین کو اپنے حق میں استعمال کرنے یا ان کی عقیدتوں کا غلط استعمال کرنے کا نام ہے یہ سب. روحانیت کیا چیز ہے؟ روحانیت دراصل خود کو جاننے کا عمل ہے, خود سے آشنا ہو کر اللہ تبارک و تعالی تک رسائی کا عمل ہے. یہ ایک سائنس ہے. روحانیت جو ہے یہ روحانی علوم کی وہ سائنس ہے جس کے تحت فرد گرو کر کے اپنے ذہن سے اوپر اٹھ کر اپنی روح سے رابطہ کرتا ہے. اب یہاں پہ ایک بات اور سن رکھیں تاکہ یہ مغالطے ذرا دور ہو جائیں. دیکھیے ایک چیز ہے ذات, ایک چیز ہے اس کی صفات, اور ایک چیز ہے کائنات. تو ذات نے اپنی صفات کو حرکت دے کر جو کائنات بنائی, اس کائناتی پروگرام کو سمجھنا روحانیت ہے. دیکھیں نا یہ جو اب آپ کو کلیئر ہو گیا کہ علم نجوم اور اس طرح کے یہ شعبہ بازیوں کے جو ہیں وہ ایک نچلے زون میں, بہت ہی نچلے زون میں روحیت کے زون میں ہیں. روحانیت جو ہے وہ بہت ہی عرف اور اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ اپنی روح کی صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے آشنا ہو سکیں, تاکہ آپ کیونکہ نائب ہیں اللہ کے, اللہ کی نیابت کے تحت ضروری ہے کہ میں اپنے باس کی بات کو سمجھوں. میں جس کا نائب ہوں اگر میں اس کی بات نہیں سمجھ رہا تو میں اس کے کام کیسے کروں گا؟ ٹھیک ہو گیا جی؟
جی بالکل صحیح ہو گیا.
جی اور کسی نے کچھ پوچھنا ہو؟
تھینک یو سر, تھینک یو سو مچ. سر میں کر لوں آپ سے سوال؟
جی جی بلا تکلف. جی
سر میں, تھینک یو سر. سر میرا پہلا سوال ہے کہ میں کون ہوں
और मेरा इस दुनिया में आने का मकसद क्या है, यानी मकसद हयात सर।
जी जी, और दूसरा
इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें। और दूसरा क्वेश्चन मेरा सर वो है, अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह दा खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून।
चलें, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। देखें, मैं कौन हूँ?
जी सर,
ये बात कौन पूछ रहा है मुझसे? आप कहेंगे कि मैं पूछ रही हूँ, तो ये मैं कौन है? ये मेरी बात, मैं जवाब दे रहा हूँ तो मेरी बात कौन सुन रहा है? आप सब कहेंगे कि मैं, अब गौर करें, आप ये नहीं कह रहे कि मेरे कान सुन रहे हैं।
जी बिल्कुल।
मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा मुंह बोल रहा है। गौर करें, मैं जो है ये अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता है। तजल्ली जात का एक नुक्ता ये मैं है। हर नुक्ता अपनी जगह अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता होने के सबब अल्लाह की जात और सिफात का अक्स अपने अंदर रखता है। अब इसकी एक मिसाल सुन लें। इसकी मिसाल बड़ी सिंपल सी है कि आप समुंदर में से एक गिलास पानी निकालें, आप 10 गिलास निकालें, आप 20 निकालें, 100 निकालें, 1000 निकालें, 10,000 निकालें, 1,00,000 गिलास निकाल लें, 1,00,000,000 निकाल लें, 1,00,000,000,000 गिलास निकाल लें, 10,00,000,000,000 गिलास निकाल लें, क्या समुंदर का पानी कम हो जाएगा?
बिल्कुल नहीं सर।
अब दूसरा सवाल कि क्या हर गिलास पानी में समुंदर की सारी सिफात नहीं मौजूद?
बिल्कुल मौजूद है।
अब आप गौर करें कि समुंदर के पानी, एक गिलास पानी में समुंदर की सारी सलाहियतें और सारी सिफात मौजूद है सिवाय उसकी वुसअत और गहराई के। यानी गिलास का पानी गिलास में है, लेकिन है तो वो समुंदर ही का पानी ना, उसकी नमकीनी, उसका जायका, उसके जो तिबी खवास हैं, उसके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज है, वो सारी की सारी वही है जो समुंदर की है। हाँ या नहीं?
जी जी।
तो ये जो मैं है इसको हमने जानना है। हजूर अलैहिस्सलाम का इरशाद अली मुकाम है कि मन अराफा नफसहु फकत, सिर्फ वो अराफा रब्बहु, वो जान सकता अपने रब को। यानी जिसने खुद को जान लिया, अपनी मैं को समझ लिया, अब वो एक मैं जो है वो छोटे बच्चे की है या किसी बड़े बूढ़े की है, वो हर एक की मैं अपनी जगह। बेसिकली तो वो सारी सलाहियतें उसके अंदर मौजूद हैं, वो इस्तेमाल कितनों को करता है, कितनों से आशना होता है, कितनों से वाकिफ होता है, कितनों को वो इग्नोर कर देता है, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें। तो ये मैं जो है ये अल्लाह की जात की तजल्ली का एक नुक्ता है। हम इस नुक्ते से आगाह होंगे तो हम अल्लाह की सिफात को भी समझना सीख लेंगे, हम अल्लाह को जानना भी सीख लेंगे। और फिर जब देखें ना, वापस वो गिलास समुंदर में जाएगा तो क्या होगा, वो अपनी सिफात से आगाह होने की वजह से अल्लाह की सिफात से आगाह हुआ, और फिर साथ में वो वुसअत और गहराई से भी आशना हो गया। यानी उसके शऊर में इतना फैलाव पैदा हो गया, हो जाएगा जब वो वापस अल्लाह में जाके मिलेगा। तो ये सारा खेल है रियलाइजेशन का। किस लफ्ज, क्या लफ्ज बोला? We have to have the realization of ourselves and then we have to realize the purpose. अब आ जाए कि मुझे क्यों दुनिया में भेजा गया। देखिए, अल्लाह ने तख्लीक किया, ये एक सवाल है, क्यों तख्लीक किया? अल्लाह रब करीम ने हमें इसलिए तख्लीक किया कि वो हमसे अपनी नियाबत का काम लेना चाहते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कुरान हकीम में इन्नी जायलो फिल अर्ज़ खलीफा, ठीक है, ये हमारी तख्लीक का मकसद है। उसके बाद अल्लाह ने अपनी सलाहियतों में से कुछ सलाहियत हम हमारे अंदर फूंक दी, व नफाक तो फी है मिन रूही, अपनी रूह में से कुछ फूंका, अपनी रूह नहीं फूंकी, अपनी रूह में से कुछ फूंका, वो सलाहियतें देकर साथ में इल्मुल अस्मा अता किया, यानी उन सलाहियतों को इस्तेमाल करने का इल्म सिखा दिया, उसका नाम इल्मुल अस्मा है। अब वो सलाहियतों को इस्तेमाल करने का इल्म सिखाने के बाद कहा कि इसका इजहार करो, यानी अपनी सलाहियतों को अब इस इल्म के मुताबिक इस्तेमाल करके दिखाओ। आदम ने करके दिखाया, जब करके दिखाया तो अल्लाह ने कहा कि आदम तुम अपने जौज के हमरा जन्नत में रहो। अब जन्नत में रहने का मतलब खुश रहो, ठीक है, खुशी में रहो। अब वहां पे आदम से सहव हुआ, गलती हुई, नाफरमानी की, जो भी हुआ, और वो शैतान के बहकावे में आ गया। गौर करें कि जब अल्लाह तबारक व तआला आदम को जन्नत में दाखिल फरमा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि भाई देखो शैतान शैतान से बच के रहना, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। अब सवाल ये है कि अगर इबलीस को अल्लाह ने मर्दूद कर दिया था तो वो जन्नत में क्या कर रहा था। यहाँ पे ये तसव्वुर वाज़े कर लें कि इबलीस जिन्नात में से था, ठीक है, और वो तख्लीक में जाहिर है कि आदम से निचले दर्जे की मखलूक है। शैतान असल में हमारे अंदर की नेगेटिविटी है, मेरे और आपके अंदर जो नेगेटिविटी है इसका नाम है शैतनत। अल्लाह ने उससे आगाह किया कि इससे बच के रहना। अब जब आदम अल्लाह की नाफरमानी का मुर्तकिब हुआ और शैतान के बहकावे में आ गया, अब शैतान ने क्या बहकावा दिया था, शैतान ने यह कहा था कि अगर तुमने इसका फल खा लिया तो तुम्हें जावेदानी मिल जाएगी। अब इस बात को समझने की जरूरत है कि जावेदानी का क्या मतलब था। तो जब हम गौर करेंगे तो ये समझ आएगी कि जावेदानी से मुराद ये है कि अल्लाह रब्बे करीम ने आदम को जन्नत में रहते हुए स्पेस पे कमांड अता की थी। स्पेस रगदन है सो शेतुमा, रगदन है सो शेतुमा, हमने तर्जमा कर दिया खाओ पियो, इस्तेमाल करो क्यों नहीं, स्पेस को जैसे चाहो इस्तेमाल करो। अब जब शैतान ने बहकाया तो वो बहकावा जावेदानी का था, तो जावेदानी से क्या मुराद है, तो इसको यूं समझे कि अल्लाह ने, मतलब है कि मैं एक मिसाल पहले दे देता हूँ कि देखे ना, फर्ज करें कि आप एक बादशाह सलामत हैं, वो एक बंदे को वजीर आजम अपॉइंट करते हैं, वजीर आजम से कहा जाता है कि भाई तुम मेरे सारे इख्तियारात इस्तेमाल करना लेकिन खबरदार मेरे तख्त पे नहीं बैठना, यानी बादशाह बनने की कोशिश नहीं करना, ठीक हो गया ना,
ठीक हो गया सर।
यानी ये जो था ये उसका था, आदम को स्पेस पे कमांड दी गई थी, टाइम जमानियत जो है ये अल्लाह की डोमेन है। अब आदम को मना किया कि तुमने मेरे जोन में नहीं आना, यानी टाइम के जोन में दस्तरस रखने की कोशिश नहीं करना। अब आदम ने क्या किया, मौका दे के तख्त से कब्जा करने की कोशिश की, ये इतना बड़ा जुर्म है, इसे बगावत कहते हैं। अब जब वहां वो बगावत का मुर्तकिब हुआ और रेड हैंडेड पकड़ा गया तो क्या हुआ, کہ جنت نے اس کو رد کر دیا. اللہ نے کہا کہ وحبت یعنی ڈیموٹ کر دیا. اس ڈیموشن کے بعد دیکھیے کہ بجائے اس کے کہ آپ سیدھا جہنم میں گرتے, چونکہ ہم اللہ کی بہت ہی محبوب مخلوق ہیں, کیا ہوا کہ اللہ نے زمین کو بیچ میں لا کے کہا کہ مستقر سے لرد زمین پہ قیام کرو, قرار پکڑو, ٹھیک ہے. وہ متان الہین, اور یہ کچھ مدت کے لیے ہے. اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ ساتھ میں اللہ نے کہا میری ہدایت آتی رہے گی, تم اس کو اگر فالو کرو گے تو تم شیطان کو ڈیفیٹ کر کے واپس آ سکتے ہو. یعنی دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے شیطان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور اس کو ڈیفیٹ کرنا ہے. اب شیطان کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے میں آپ کو ایک جملہ بتا دیتا ہوں. دیکھیں نا, یہ ہماری نیگیٹیوٹی ہے, لہٰذا ہمیں اگر کوئی چیز بری لگ رہی ہے تو ہماری نیگیٹیوٹی متحرک ہو گئی. تو برا لگنا یہ سب سے بڑی پہچان ہے شیطان کی. اگر آپ کو کوئی چیز بری لگ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ شیطان پر مار رہے. اب یہاں پہ مغالطے کی اصلاح ضروری ہے. اکثر یہ لوگ کرتے ہیں کہ تو کیا کوئی غلط کرے تو ہم غلط ہونے دیں. نہیں, اب یہاں پہ فرق سمجھ لیں. میں نے لفظ برا استعمال کیا, برا لگنا. آپ غلط کو غلط دیکھیں گے تو اس کی اصلاح فرمائیں, اس پہ ریئیکٹ نہ کریں, اس کو ریسپونڈ کریں. اب آپ کا آ گیا دوسرا سوال. یہ بات واضح ہو گئی کہ انسان کی تخلیق کا کیا مقصد ہے, نیابت الہیہ, اور دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہے کہ آپ نے شیطان کو ڈیفیٹ کر کے دکھانا ہے. دیکھیں نا, اگر آپ شیطان کو ڈیفیٹ کریں گے تو اب آپ واپس جنت میں جا سکتے ہیں. آپ نے ثابت کرنا ہے کہ میں اللہ کا تابع دار ہوں, میں اللہ کا باغی نہیں ہوں, اور میں آئندہ شیطان کے چنگل میں نہیں پھنسوں گا. اگر آپ نے یہ ثابت کر دیا تو آپ واپس جنت میں جا سکتے ہیں, ورنہ پڑھتے رہیے نمازیں جو مرضی کریں. اب آ گیا دوسرا سوال. یہ جو آیت ہے نا, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, اس آیت میں تین لفظ ہیں جن کو سمجھنا ہے ہمیں. پہلا لفظ ہے اولیاء اللہ, دوسرا لفظ ہے خوف, اور تیسرا لفظ ہے حزن. اولیاء اللہ کی ڈیفینیشن آپ ذہن میں بٹھا لیں تو یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے. اولیاء اللہ کہتے ہیں ایسے بندے کو جو اللہ کے ساتھ ذہنی طور پہ رابطے میں ہو, اللہ کے ساتھ اس کی دوستی ہو. بندہ بھی اللہ کو اپنا دوست مانتا اور اللہ بھی بندے کو اپنا دوست مانتا ہو. غور کریں کیا کہہ گیا. دیکھیں نا, میں دعویٰ کروں کہ آپ کے ساتھ میرا دوست میری دوستی ہے, ٹھیک ہے, میں دعویٰ کروں کہ آپ کے ساتھ میری دوستی ہے, لیکن آپ مجھے گھاس ہی نہ ڈالیں تو کیا دوستی ہوگی؟ تو مطلب کہنے کا یہ, اولیاء اللہ کا مطلب یہ کہ بندہ سمجھتا ہو کہ میں اللہ کا دوست ہوں اور اللہ بھی اسے اپنا دوست مانتا ہو, یعنی اللہ کے مطابق وہ چلنا جانتا ہو, اللہ کو محسوس کرنا جانتا ہو. یعنی اس کی نظر ایسے کام کرے کہ اسے پتا ہو کہ یہ بات اللہ کو پسند آ رہی ہے, یہ بات اللہ کو ناگوار گزر رہی ہے. اب جو بندہ یہ درجے پہ آ جاتا ہے کہ اسے اللہ کے ساتھ ربط اور تعلق حاصل ہو جاتا ہے, دوستی کا, وہ اللہ کی موجودگی کو محسوس کرنے لگتا ہے, تو اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم. یعنی خوف کسے کہتے ہیں؟ ये जो हमारे जहन में सवाल आता है क्या होगा, अब सवाल आना कोई बुरी बात नहीं है, क्या होगा तो आपका जहन आगे चल के उसका जवाब सोचे कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अगर ये होगा मैं ये करूंगा, अगर ये होगा ये करूंगा, तो ये तो ठीक तब अप्रोच है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर हमें ये तकरार शुरू हो जाए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तो इसको खौफ कहते हैं। अब हुस्न क्या है, हुस्न ये है कि अंदेशा यानी कि कोई नुकसान हो गया तो अब उस पर आप दुखी फील कर रहे हैं, तो ये दुख जो है ये से क्या कहते हैं हुस्न। एक चीज देखे ना, किसी चीज के खो जाने का अंदेशा ये खौफ है, और किसी चीज के खो जाने के बाद दुख जो है ये हुस्न, यानी बालफाजे दीगर ये हुआ कि क्यों हुआ। अब आप गौर करें, अगर आपकी अल्लाह के साथ दोस्ती है और सब कुछ अल्लाह कर रहा है, तो आपके जहन में अगर ये सवाल आएगा कि भी क्या होगा, और आपका जहन अल्लाह के साथ रबते में, तो आप कहेंगे कि भी करने वाली जात अल्लाह की है, वो जो करेगा बेहतर करेगा, जो भी होगा बेहतर होगा, तो आपको हुस्न खौफ रहा। अब इसी तरह जब आपको किसी चीज का नुकसान हुआ, कोई चीज टूट गई, कोई रिश्ता टूट गया, कोई बंदा छोड़ के चला गया, यही हमारे दुख है ना। अब अगर हमने इस इन दुखों का मदावा करना है तो आसान तरीन तरीका अल्लाह ने बता दिया कि भी मेरे साथ दोस्ती कर लो। जब अल्लाह दोस्त है और करने वाली जात अल्लाह की है, तो जो भी किया अल्लाह ने किया, मेरे दोस्त ने किया, लिहाजा ठीक किया। गौर करें, इसलिए अल्लाह तबारक व ताला ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्तों को ना तो कोई खौफ होता है और ना कोई हुज़्न, यानी उनके जहन में क्या हुआ और क्यों हुआ सवाल तकरार नहीं पकड़ते। सवाल आता है वो उसका जवाब सोचते हैं, उसको हल करते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर ये क्या होगा क्या होगा क्या होगा, इसकी तकरार रुक जाए
जी,
तो आपको कोई खौफ नहीं है। क्यों हुआ, ये तो नहीं होना चाहिए था, ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, यानी दिन वो तकरार में चला जाता है ना, तकरार नहीं होनी चाहिए। जब तकरार नहीं होगी तो आपका जहन शांत रहेगा, उसका हल सोचेंगे, चले हो गया अब क्या किया जा सकता है, कचरा उठा के बाहर फेंक दो। जी और कोई सवाल?
थैंक यू सो मच सर।
वेलकम। जी वालेकुम अस्सलाम।
जो दुआ मांगते हैं तो हम अल्लाह को डिक्टेशन दे रहे होते हैं, उसमें आपने एक सूरत की उसने बताया था, मुझे नगमा ने भेजा था,
तो ठीक हो गया।
मुझे आपसे ये पूछना जी, तो मुझे ये पूछना था सर, दुआ तो मांगनी चाहिए ना, लाइक हिदायत की,
बिल्कुल
इन सब चीजों की।
मैंने असल में जी, मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत अर्ज कर देता हूँ, मैं समझ गया आपकी क्या बात। देखिए कुरान की जो दुआएं हैं ना, जो कुरानी अदिया है, वो दुआएं जो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई उन्हें अदिया मासूरा कहते हैं। ठीक है, उन्होंने भी तो दुआएं की ना। मैंने आपको दुआओं की किस्में बताई, एक दुआ की किस्म वो है जो कुरान में मजकूर है, जैसे रब्बना आतिना फिर दुनिया हसनत व फिर आखरत हसनत, ये दुआ नहीं है तो और क्या, रब्बी इन्नी मग़लूबुन फंतसिर, ऐ मेरे रब मैं मग़लूब हो गया मेरी मदद कर, ये दुआ नहीं है। अब मैं ये कह रहा हूं कि एक दुआएं वो हैं जो कुरान में मजकूर हैं, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, या वो दुआएं हैं जो हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाई? कुरान में नहीं, वैसे जो उनसे मंसूब है, ठीक है जी। अब उन दुआओं की नौइयत क्या है? वो पुकारना है। और हम और आप जो दुआएं करते हैं ये डिक्टेशन के जुमरे में जाती हैं। मसलन मैं सुबह नमाज के बाद दुआ कर रहा हूँ, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये ना करना। वाजे हो गई बात? अब देखें ना, जब कारसाज़े हकीकी अल्लाह की जात है तो वो जो भी कर रहे बेहतर कर रहे। मैं ये अर्ज करता हूँ कि मैं सुबह उठ के ये दुआ क्यों नहीं करता कि बारे ला तो मेरे लिए आज क्या हुक्म है। देखे ना, मैं अल्लाह मियां को डिक्टेशन बोल रहा हूँ कि या अल्लाह मेरे रिजक में फराबानी अता फरमा। अल्लाह कहता है राजक मैं हूँ। क्या ये दुआ बेतुकी नहीं हो गई? इसका मतलब है मैं अल्लाह को भरोसा ही नहीं कर रहा, मैं डिक्टेशन बोल रहा हूँ कि या अल्लाह तू मेरे रिजक वाफर कर। आप जरा सा गौर करें कि फर्क समझ आ गया आपको मेरी बात का? आई एम सो ग्रेटफुल जी। देखे ना, हमें अल्लाह को पुकारना तो अल्लाह ही को है। अल्लाह कहता है फदुआ, यानी फदुआ रब्बहू, अपने रब से दुआ की उसने। फिर अल्लाह ही कहता है कि मैं सभी दुआ हूँ, हैं? मैं दुआओं को सुनने वाला हूँ। बात यह है, हमें पुकारना है मदद के लिए, लेकिन क्या करने के लिए? काम मैं अपने कर रहा हूँ, पुकार अल्लाह को रहा हूँ, अल्लाह के खिलाफ काम कर रहा हूँ और अल्लाह को पुकार रहा हूँ कि मेरी मदद करो। मैं अल्लाह के लिए कोई काम करूँ, फिर मेरा हक बनता है कि मैं अल्लाह को पुकारूं के बारे ला, ये मैं तेरी खातर तेरे कहने पे ये काम कर रहा हूँ, मेरी मदद फरमा। बात क्लियर हो गई ना? आई एम सो ग्रेटफुल। बस ये फर्क जो है ना डिक्टेशन का और दुआ का, मैं वो वाजे कर रहा था। खुदा ना खास्ता मैं ये नहीं कहता कि दुआ नहीं करनी चाहिए, जाहिर है।
अब गलत नहीं कह रहे होंगे, मुझे समझने में।
वो हजरत अय्यूब बीमार हुए तो उन्होंने क्या कहा कि मुझे सेहत दे? नहीं, उन्होंने कहा इन्नी मुस्निद दुर्रो, मुझे जर ने छू लिया, यानी मेरी कमजोरी की वजह से या मेरी गलत सोच की वजह से नुकसान ने मुझे छू लिया। अब वो उससे मदद मांग रहे हैं कि जरा बचा मुझे। वैसे एक मजे की बात बताऊं, मर्ज से, ये लफ्ज उर्दू में मर्जी जो है इसका अरबी में तर्जमा बनता है मेरा मर्ज। जब हम अपनी मर्जियां करते हैं तो असल में ये हम अपने मर्ज का शिकार हुए होते हैं।
अच्छा सर, एक हजरत अय्यूब से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कुरान में है कि जब मैंने पढ़ा कि कुरान में है कि जब वो ठीक हो गए या ठीक होने लगे तो अल्लाह ने कहा अपनी कसम पूरी करने के लिए तुम एक मुठ, पता नहीं, एक मुट्ठी कोई झाड़ू ले लो या क्या ले लो। अच्छा, अब लोगों ने उसका तर्जुमा ये किया कि उन्होंने अपनी बीवी को मारना था, वो तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या
जी। हाँ, बस वहाँ पे जो बात है ना, इसमें रिवायतें ज्यादा शामिल हैं, उसमें कहा ये गया कि उन्होंने बीमारी के दौरान उनकी जौजा ने, अब जो मैंने रिवायत सुनी है पढ़ी है वो ये है कि वो खातून जो थी वो जब बहुत ही मौशी हालात बिगड़ गए तो वो नौकरी करने बाहर घर से निकली, तो उस पे हजरत अय्यूब ने नाराजगी का इजहार किया और कहा कि मैं ठीक हो जाऊँ ना तो तुम्हें मैं 100 दुर्रे मारूंगा।
अच्छा,
तो जब अल्लाह ने उनको शिफा दी तो वो परेशान हो गए कि मैंने तो गलत किया, एक नबी को ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। तो अल्लाह ने उनको कानून से खेलने का तरीका बता दिया कि तुम 100 तिनकों वाला झाड़ू लेके तो बस ऐसे छू दो उसको। ठीक हो गया। ये बस जो भी है वहाँ स्याह को सबाक से लगता है उन्होंने कोई कसम खाई थी जिसको पूरा ना करने पर उन्होंने 100 दुर्रे या 100 जूते या 100 कोड़े मारने का कहा था। ठीक हो गया जी, बहुत शुक्रिया। जी और किसी ने कुछ बात पूछनी है?
सर मैं सवाल करूं?
इरशाद
सर, मेरा सवाल है, नजर, रौ और बसर, ये तीन मोड बताए गए हैं कुरान में देखने के, मोमिन की फिरासत से डरो कि वो अल्लाह के मुंह से देखता है, तो सर इसमें ये कौन सी बसर की बात हो रही है सर?
ये असल में देखने के निगाह के तीन दर्जे कुरान में आते हैं। ठीक है, वो एक आयत है जिसमें यनजरूना अलैका, यानी आपको नजर आ रहा है कि तरा हम, वो तुम्हें देख रहे हैं, फलाम ला युबसिरून, लेकिन वो देख, उनको नजर कुछ नहीं आ रहा, गौर करें। यानी एक ही आयत में नजर, बसर और रा का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, नजर कहते हैं ये जो आंख जिस तरह से देख रही है, जिधर टिकी हुई है उसको नजर कहते हैं। इसी से लफ्ज मुंजिर है, इसी से लफ्ज इंतजार है, गौर करें। इंतजार का मतलब नजर रखना, यानी कि उधर आंखें एक तरफ टिकी हुई है। ठीक है, अब रा कहते हैं मादी जोन में हवास जब किसी चीज को नजर की मदद से दिखाते हैं। मसलन आपकी नजर टिकी हुई है घड़ी पे, लेकिन ध्यान नहीं है, लेकिन अब ध्यान आ गया ये घड़ी है। ठीक है, तो आपको घड़ी दिख रही है, लेकिन घड़ी क्या है ये नहीं पता। तो ये जब आपको ये पता हो कि मैं घड़ी को देख रहा हूं, टाइम देख रहा हूं, ये वक्त को मेयर करने का एक इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, तो गोया ये आपने अपनी बसर का इस्तेमाल किया, यानी अपनी फहम और फिरासत का। हजूर कलंदर बाब वालिया ने कहा कि बसर में नजर और समात दोनों जिक्र आ, दोनों एजेंसियां जेरे बहस आती हैं। यानी जो कुछ देखे ना, अब आप सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं, लेकिन आपके जहन में अंदर तस्वीर चल रही है। जैसे मैंने समुंदर की मिसाल दी, तो आपके जहन में समुंदर भी आया, गिलास भी आया, गिलास का पानी भी आया। तो ये बसारत कहलाएगी, क्योंकि आंखों के सामने तो कुछ नहीं है। ठीक हो क्या? अब ये जो कहा कि मोमिन की फिरासत से डरो, फिरासत कहते हैं अंडरस्टैंडिंग को, फिरासत कहते हैं विजडम को, फिरासत कहते हैं किसी बात को दूर आगे तक समझना। आपको सुन के हैरत होगी, ये फिरासत का लफ्ज जो है ना, ये फर्स, फर्स कहते हैं घोड़े को, यानी कि रसाई की बात हो रही है कि उसके जहन की रसाई। अब देखना, एक पैदल आदमी की रसाई कितनी है, वो दौड़कर कितनी दूर तक जा सकता है, लेकिन एक घोड़ा कितनी दूर तक जा सकता है। तो फिरासत का मतलब है आपके जहन की पेशबीनी की रसाई क्या है, आप कितना आगे देख सकते हैं। अब अल्लाह ने ये फरमाया, ये जो हदीस है कि मोमिन की फिरासत से डरो, डरो नहीं, ये लफ्ज डर तो गलत है, मोहतात यानी कि एहतियात करो उसके सामने बात करते हुए, वो बहुत आगे देख रहा होता है। ठीक हो गया ना? اب مومن کا لفظ ہے, لفظ ہے مومن, مومن کہتے ہیں جو امن میں ہو. امن میں کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق جڑا ہوا ہے. جس کا تعلق اللہ سے جڑ گیا وہ کیسا بندہ ہوگا؟ وہ پریشان ہوگا, وہ کسی کو پریشان کرے گا؟ نہ وہ خود پریشان ہوتا ہے, نہ وہ کسی کو کرتا ہے. وہ جو سکون سے بیٹھا ہوا ہے اس کو تو فرصت ہی فرصت ہے, وہ بہت دور تک سوچتا ہے کہ اچھا اگر میں یہ کیا تو کیا ہوگا, اگر اس نے یہ کیا تو کیا ہوگا, اگر اس نے یہ کیا اور یہ ہوا تو کیا ہوگا. پھر وہ مطلب لوگ تو ایک قدم آگے نہیں دیکھ سکتے, وہ 40 قدم تو کم از کم آگے دیکھ ہی رہا ہے. تو ایسے بندے کے سامنے آپ اس کو بے وقوف بنانے کی کوشش کریں گے تو ڈرنا ہی چاہیے نا, کیونکہ وہ تو پھر پکڑ لے گا. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں جی,
نظر رکھنا ہے.
نہیں نہیں نہیں, یہ نظر لگ گئی تو ہمارے ہاں ہندوانہ وہ طرزیں ہیں نا, یہ ہندوانہ فلسفی ہے. دیکھیں نظر لگنے کا مطلب ہمارے ہاں یہ لیا جاتا ہے کہ دوسرے کے دیکھنے کی وجہ سے میرا پورا جو سانچا ہے وہ بگڑ گیا, خراب ہو گیا. یعنی میں اتنا کمزور ہوں. آپ غور کریں انگریزوں کے ہاں یہ کیوں نہیں ہے نظر لگنے کا؟ وہ یہاں سے ہمارے ہاں جو بڑے صغیر سے لوگ گئے, انہوں نے ایول آئی بنا دیا وہاں پہ کہ بعض لوگوں کی نظر بری ہوتی ہے, وہ یعنی حسد سے, بغض سے, کمینگی سے, نفرت سے دیکھنے کی وجہ سے بندے کی, اگر آپ نے اثر لیا کسی کی نفرت کا تو کیا ہوا, آپ کی کمزوری ہے. اب اسی ایک نظر کے لفظ سے مجھے ایک اور بات یاد آ رہی ہے, پتہ نہیں آپ کو اچھی لگے نہ لگے. ہمارے ہاں نظر نیاز دی جاتی ہے, وہ نون زال رے, ٹھیک ہے نا؟ اب یہ جو نون زال رے نظر ہے, عربی میں اس کا مطلب ہے وارننگ, منذر. تمہیں تنبیہ کرنے والا بنایا گیا. اب پتہ نہیں اس نظر کا اس نظر سے کیا تعلق ہے. بالکل وہی بات ہے, شاباش, صحیح کہا آپ نے. جی ویلکم. جی اور کوئی سوال؟ وعلیکم السلام. جی یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے. دیکھیں نا, ہمیں تربیت ہی نہیں ہے کہ آنے والی کس اطلاع کو وصول کرنا ہے اور کس اطلاع کو قبول نہیں کرنا, کون سی اطلاع کہاں سے آ رہی ہے. دیکھیں نا, یہ ساری باتیں علم سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر ان کی تربیت سے تعلق رکھتی ہیں. تو علم اور تربیت یہ دو چیزیں ہو گئیں. جب آپ کو علم ہوگا کہ بھئی اطلاعات کے سورس کیا ہے, کہاں سے آ رہی ہے, اللہ کی طرف سے آ رہی ہے, میرے نفس کی طرف سے آ رہی ہے, ماحول سے آ رہی ہے یا شیطان کی طرف سے آ رہی ہے, پہلے تو اطلاع کی وصولی کا وصولی سے پہلے آپ کی نظر سورس پہ ہونی چاہیے. سورس کو دیکھنے کے بعد آپ फैसला करेंगे कि ये तलाक कबूल करने की है कि नहीं करने की, ये देखेंगे सब तरबियत में आ गया, ठीक है ना। अब तरबियत ना होने की वजह से हम अल्लाह की तरफ से आने वाली तलाक की के साथ उसको इनकार कर देते हैं, लेकिन वो इत्तला तो चलती रहती है। जो मान लेता है अल्लाह उसका भला कर देता है, जो नहीं मानता अल्लाह कहता है कि चलो ठीक है तुम्हें नहीं पसंद तो क्या किया जा सकता है। जी इरशाद,
हम बात करते बच्चों की तरबियत करते
माफी चाहता हूँ, दोबारा फरमाएंगे नहीं आवाज साफ नहीं आ रही। जी दोबारा कहिए
सर।
बस वो सिग्नल्स का मसला चल रहा है, मेरा ख्याल है कि बात बिल्कुल नहीं पल्ले पड़ रही कि आप क्या इसे ज़रा तरबियत के हवाले से कुछ बात आपने कही, आगे क्या कहा
सर। हम बहसियत खातून सारा दिन घर के काम करते हैं, भी करते हैं और खुशदिली से कर रहे होते हैं सब काम, शौहर और बच्चों से भी बहुत लेकिन जब कभी हम अकेले में अपने साथ बैठे होते हैं तो अंदर में एक खालीपन और अधूरापन महसूस करते और हमारा दिल और चैन मुतमईन नहीं होता सर, इसकी क्या वजह होती है ये जानना चाहते।
ये पहली बात तो ये देखिए, मैंने बात के जब आज के लिए नशिस्त के आगाज में क्या अर्ज किया कि मैं जो है ना इसने अल्लाह के मुताबिक चलना है, ठीक है। आप घर में जो कुछ भी कर रहे हैं अगर आप खुश दिली से कर रहे हैं और इत्मीनान कल्ब हासिल नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि कोई कमी है। अगर आपके अंदर कमी है तभी तो जब आप अकेले बैठे तो आपको खालीपन का एहसास हुआ, वरना तो जगह अगर आपने अपने काम देखे ना घर में सफाई की, हंडिया पकाई, बच्चों को अच्छी बात भी कह दी, अब उसके बाद जब आप अकेले में बैठे तो आपको तो खुश होना चाहिए। आपने जो कुछ किया आप उस पर खुश क्यों नहीं है? अगर हम देखें ना, मैंने सारा दिन जो कुछ भी किया जब मैं अकेला बैठा और मैं अपनी कारकर्दगी का जायजा ले रहा हूं तो मुझे उस पर खुश होना चाहिए या कि अगर गलत किया फिर तो मैं खुश नहीं हो सकता ना, कहीं कोई कमी रह गई है, एक वजह ये हो सकती है। दूसरी कि जब हम अकेले बैठे तो हमने मुस्बत तर्जों में नहीं सोचा, इन खलाए जहनी हासिल हो रहा है, अल्लाह ने शांति अता कर दी, कोई ख्याल ही नहीं आ रहा, लेकिन तरबियत नहीं है और हम सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, मैं क्या यार ये क्या हो गया, खाली क्यों हो गया है, आपको सुकून लड़ रहा है बजाय उस सुकून को एंजॉय करना सीखें। तो ये गोया शैतान ने पर मार दिया, आज जब तक काम में लगे रहे सब ठीक रहा, जब अकेले बैठे तो शैतान आ गया। अब अगर देखें ना आप लौह कलम की तालीबात, कलंदर शऊर की तालीबात, अंबिया कराम की तर्ज फिक्र की बातें कि इन खलाए जहनी आपको खाली रहना है, है? इस खिला के साथ कंफर्टेबल फील करना सीखना है। जब आदमी तन्हाई में सुकून से बैठना सीख जाता है ना, तो अमली जिंदगी ज्यादा फासला तय करती है। ये नई बात है। ये जो मुराकबे का दर्स दिया जाता है वो बेसिकली यही तो है कि आप फारग होके अकेले बैठ जाएं, बस अपने साथ बैठें और अपने साथ बैठ के खुश होना सीखें। हैं जी,
सर आपने भी एक जुमला बोला था, वो फिर दोबारा से बोलेंगे। आपने कुछ बताया था, कोई कानून बताया था, क्या बताया था?
कुछ एक आध लफ्ज फरमाएं तो मुझे याद आ जाए, मैं तो बस रवानी में अर्ज कर गया।
अस्सलाम वालेकुम सर जी, वो आपने बोला था कि आज ये एक नई बात।
हाँ यानी अपने साथ बैठ के जब आप अमली जो भी सोच विचार करते हैं उसकी वजह से अमली जिंदगी के फासले ज्यादा तय होते हैं, ज्यादा काम होते हैं। जब हम अपने इनर में अपने साथ बैठना सीख जाते हैं तो हमारे बाहर मादी जोन में कामों की मकदार और रफ्तार दोनों बढ़ जाती है। ये अमली जिंदगी में हम ज्यादा फासला तय करते हैं। देखे ना, एक चीज को आपने बैठ के कहीं तहम्मुल से सोच लिया तो करते वक्त कई फालतू स्टेप्स बीच में से हजफ हो जाएंगे और काम तेजी से होगा। अब आप अकेले बैठे हैं और आपने फर्ज करें कि तरतीब दिया कि आज सुबह से शाम तक मुझे क्या क्या करना है, तो जब आपके जेन में एक तरतीब होगी तो आप सारे काम तरतीब से करेंगे, जल्दी से काम सारे निमट जाएंगे, तो अमली जिंदगी की राहें आसान हो जाती हैं। जी
सर, थैंक यू सर। सर मेरा एक सवाल है,
इरशाद
मेरे मुराद से।
इरशाद
291 में घबराहट में खामोश हो जाना चाहिए, बात कर
अगर आप को घबराहट हो तो क्या करेंगे, उल्टी सीधी बात कहने से बेहतर आदमी चुप रहे। भाई बोलना कौन सा जरूरी है, अगर किसी जगह बात का जवाब नहीं बन पड़ रहा, आपको समझ नहीं आ रही या ऐसा कोई खदशा है कि मैं कोई कच्ची बात या गलत बात ना मुंह से निकल जाए, तो बेहतर है कि खामोश रहे बंदा।
तो सर अंदर हत्तल पुत्तल मची हुई होती है कि कुछ कहना है, उसी भी कुछ कहना
उसी
है
इसी को घबराहट कहते हैं ना। जब आपका देखें थॉट्स प्रोसेस होकर समअप हो जाएंगे और आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहती हूँ और किन अल्फाज में कहना चाहिए और उसके क्या असरात मुरतब होंगे, जब आपके जहन में ये क्लियर होगा तो आप नहीं घबराएंगे। अगर घबराहट है तो इसका मतलब है अभी हंडिया पूरी पकी नहीं है, इसलिए खामोश रहो, ढक्कन रखो अभी।
ओके सर,
उसे दम पे रहने दो।
जी सर, थैंक यू सो मच सर,
बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है काफी है, या किसी ने कोई सवाल पूछना है? चलें ठीक हो गया, मैं इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो कोशिश करता हूँ कि शेयर हो जाए यहीं पर इसी ग्रुप में, ठीक है?
थैंक यू सो मच सर।
आप दोबारा सुन लेंगे तो वो फिर कोई सवाल होगा तो वो आप कर सकते
हैं।
बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। मैं एक बात अर्ज कर देता हूँ, सुने सुने सुने, ये जो ग्रुप आपने बनाया ना डिस्कशन का, इसमें बेसिकली जो भी किसी के जहन में सवाल हो, बेशक वो टेक्स्ट मैसेज की सूरत में या वॉइस क्लिप की सूरत में, अगर यहाँ पे हम नहीं कर सके तो वहाँ आप कर सकते हैं, ठीक हो गया? मैं कोशिश करूंगा कि उसका वॉइस क्लिप में या टेक्स्ट मैसेज में जवाब दे दिया करूं। इस तरह से जो भी बात आपके जेहन में उलझन का बायस बने जरूर पूछें, या अगर वो होगा तो वो हम अगर उस सवाल को मैं अगली नशिस्त के लिए रख लूंगा, ठीक है, फिर उसमें वजाहत अर्ज कर दूंगा। इरशाद
सर, मैं कह रही थी इतना अच्छा ये ग्रुप है, मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है, आप कोई अच्छी सी बात बता के चले जाए, हमें सोचने के लिए ले जाए।
अभी तक क्या मैंने कोई बुरी बातें बताई?
हमारे सवालों के जवाब दिए, आप अपने से हमें कुछ बता के जाए।
मैं यही कहूंगा कि आप अल्लाह आपको तौफीक दे अच्छे अच्छे सवाल पूछने की, इससे मेरा भी जहन खुलेगा। चले बहरहाल देखे जी, सीधी सी बात है कि ये जो आयत आज हमने मुतालिया की ना, अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इससे बड़ी अच्छी कोई बात नहीं हो सकती कि आपकी अल्लाह से दोस्ती हो और आप खौफ और हुज़्न से आज़ाद हो जाए। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस अल्लाह की दोस्ती से नवाजे और आप खौफ और हुज़्न से आज़ाद हो जाए। अल्लाह हाफिज़।